رب العجم قطب العالم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم عارف مصطفی جو کہ حاج جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مشہور مثنوی کی جس کے اندر حضرت والا نے اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حکایات کی شکل میں نقل فرمایا ہے. قصہ مگس و تخیل خام, ایک مکھی کی خام خیالی. ایک جگہ ایک گدھے نے پیشاب کیا, اس کی مقدار اس قدر تھی کہ گھاس کے تنکے اس کے بھاؤ کی زد میں بہنے لگے. تو ایک مکھی ایک تنکے پر بیٹھ گئی اور گدھے کے بہتے ہوئے پیشاب پر اس نے محسوس کیا کہ میں دریا میں سفر کر رہی ہوں, اور یہ بہتا ہوا تنکا ایک عجیب کشتی ہے. دوسری مکھیوں کے مقابلے میں اسے اپنی برتری کا احساس ہوا اور یہ لطف اس نے کبھی نہ پایا تھا. بس اس کے خیال میں یہ بات آئی کہ میں دوسری مکھیوں پر اپنی فوقیت اور بلندی کا اعلان کروں. چنانچہ اس مکھی نے کہا, مگز بر برگ کا و بولے خر, ہم تو کشتی با ہمی افراخت سر. ایک مکھی گھاس کے تنکے اور گدھے کے پیشاب پر مثل کشتی چلانے والے کے اپنا سر ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ گفت من دریا و کشتی خاندام, مدت در فکر عام ایمان دام. مکھی نے کہا کہ میں نے دریا اور کشتی رانی کا فن پڑھا ہے اور اس فکر میں ایک مدت صرف کی ہے, یعنی ایک مدت ایک زمانہ لگایا ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکھی جس حماقت میں گرفتار تھی, اسی طرح ہمارے عقلاء زمانہ نے اپنے اوہام اور افکار باطلہ کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے. یعنی یہ وہی حضرات ہیں جو میڈیا پر اور ٹی وی پر اور جن کو اخبار وغیرہ یا کوئی رسالہ مل جاتا ہے, پھر اپنے خیام خام خیالی اور اپنے افکار باطلہ جو وحی الہی سے محروم ہے اور نور وحی سے محروم ہے, تو اسی پر وہ اس کا نام کیا رکھتے ہیں, جی ہماری تحقیق ہے. تو فرمائے کہ ان کی تحقیق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکھی گدھے کے پیشاب پر بیٹھ کر کشتی بانی کا فن اور اعلان کر رہی ہے کہ ارے ہم نے ایک مدت صرف کی ہے. تو معرومی فرماتے کہ یہ مکھی جس حماقت میں گرفتار تھی, اسی طرح ہمارے عقلاء زمانہ نام نہاد عقل مند اپنے اوہام اور افکار باطلہ کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے اور وحی الہی کے آفتاب سے استفادہ کرنے میں اپنی توہین سمجھ کر مثل خفاش جو ہے چمگادڑ کو کہتے ہیں, مثل خفاش روح کشی اس آفتاب, یعنی آفتاب سے منہ پھیرنا اور آفتاب دشمنی کی وجہ کرتے ہیں. کیونکہ جیسے جس طرح سے خفاش اور چمگادڑ ہے وہ اس کو آفتاب سے دشمنی ہے, لہٰذا دن میں نہیں نکلتی, لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کا عذاب اس پر یہ ہے کہ الٹی لٹکی لیے, اور جس منہ سے کھاتی ہے اسی منہ سے ہکتی بھی ہے وہ, اس کا امپورٹ اور ایکسپورٹ آفس ایک ہی ہے. یہ میرے مرشد کے جملہ ہے کہ اس کا امپورٹ آفس اور ایکسپورٹ آفس وہ ایک ہی ہے. اور خیالات فاسدہ کی تاریخوں میں الٹے لٹکنے کو کمال انسانیت سمجھتے ہیں. مولانا ایسے ہی حمقاء زمانہ کو نصیحت فرماتے ہیں, صاحب تاویل باطل چو مگس, وہ میں او بول خرو تصویر خس. جو لوگ تاویل باطل میں مبتلا ہو کر نور وحی الہی سے روح گردانی کر رہے ہیں تو ان کی مثال اس مکھی کسی ہے کہ ایسا شخص, یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ اچھا اس میں وہ طالب علم بھی داخل ہے جو چند کتابیں پڑھتا ہے اور چند کتابیں پڑھ کے اس میں حکم تلاش کرتا ہے, حکمتیں تلاش کرنا شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب مجھ پر بھی جو ہے نا وہ حکمتوں کی, میرے خیال میں یہ تحقیق سب سے اچھی ہے اور اس کی یہ حکمت ہو سکتی ہے. ارے ابھی الف با تا سا پورا پڑھا نہیں اور اب وہ سوچا ہے کہ میں بھی ذرا کچھ پڑھوں گا نا تو اپنے حروف تہجی خود بناؤں گا. تو لہٰذا یہ احمق, یعنی یہ وہ طالب علم بھی اس کے اندر داخل ہے اور وہ صوفی بھی اس کے اندر داخل ہے کہ جو تھوڑے دن اللہ اللہ کرتا ہے شیخ کی صحبت کے سے, جو اس کے قلب میں شیخ کے نور کے شیخ کا نور کا جو منعکس ہوتا ہے روشنی پڑتی ہے تو اس سے وہ ایک خام خیالی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. और अपने को कुछ समझने लगता है और थोड़ी सी किताब पढ़कर उसमें अपनी हिकमतें तलाश करता है कि मेरी वजह से ये हो सकती है, मेरी हिकमत और मेरी समझ में ये बात आ सकती है कि इसकी ये ताकत है। तो ये उसमें भी एक लोग शामिल है कि जो लोग ताबिल बातिल में मुब्तला होकर नूर वही इलाही से रू गर्दानी कर रहे हैं तो उनकी मिसाल उस मक्खी की सी है। ऐसा शख्स अपने वहमो ख्याल को अपनी नजात और कामरानी का सबब करार देता है और वही इलाही को भी अपनी राय के ताबे करना चाहता है और हर जगह ये कहता है कि मैं ये समझता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि कानून जो है वो काला है। फिर जब जूते पड़े तो कहा नहीं ये तो नहीं है, असल में कानून तो ठीक है लेकिन लोग इसके इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो फिर इस तरह की बातें करता रहता है और मेरी राय में यह है इस तरह बकता है और नतीजा ये होता है कि तवातुर और इजमाए उम्मत हत्ता के हजरते सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मुअतकदात और फैसलों पर भी अपने फैसले देता है और सहाबा को अपने फैसले के अपने तराजू में अपने इंसाफ के तराजू में तोलता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद ने इस जगह तो नहीं एक जगह एक बात अजीब फरमाया कि अल्लाह वालों को सहाबा की तो क्या शान है, फरमाया कि अल्लाह वालों को और उलमाए रब्बानियून को अपने इल्म के तराजू और अपने तराजू में तोलना ऐसा ही है कि जैसे एक जर्रे ने पहाड़ से कहा कि मैं तेरा वजन करूंगा कि तू कितना वजनी है, तो पहाड़ हंसने लगा, उसने कहा जब तू मेरा वजन करने आएगा तो न तू रहेगा न तेरा तराजू रहेगा। तो इसी तरह से जो वो लोग जो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर और मुहद्दिसीन एग्जाम पर कि जिन्होंने इतनी तहकीक मेहनत कर करके एक एक हदीस शरीफ की सनद और किताबें बड़ी मेहनत से अपनी इखलास तकवा और अपनी मेहनतों के निचोड़ से कि इल्म हासिल करना फिर आगे उम्मत को पेश करना, उनको भी अपने कठहरे में लाके खड़ा करते हैं कि जी इन्होंने ये क्या मेहनत की, ये क्या इस तरह का काम किया। दादा ये बेवकूफ लोग, इन अहमकों को दुनिया, इनकी दीन तो बर्बाद होता ही है लेकिन ये लोग दुनिया में भी जलीलो खार होते हैं। इन्हीं के अंदर, इन्हीं मिसालों के अंदर ये हमारे उकलाए जमाना जो जमाना जदीद के अंदर है जिसमें मौदूदी साहब भी शामिल है, नाम उसका रखा जमात इस्लामी और हकीकत ये कि इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हजरत साहबा के मोतकदात और फैसलों पर भी अपने फैसले देता है। बस उसकी मिसाल बिल्कुल वही है जो इस किस्से में मजकूर है कि इन ओहाम और फासिद ख्यालात की मिसाल गधे का पेशाब और घास के तिनके की तस्वीर है जिस पर ख्यालात की कश्ती राली का उसको फख्र है। आगे मौलाना ऐसे शख्स की इस्लाह का तरीका बयान फरमाते हैं। फरमाते अगर मक्खी तावील को अपनी राय में दखल न दे और तावील परस्ती से तौबा कर ले और तो तकदीर उस मक्खी को हुमा बना दे। सुभान अल्लाह, यानी ये बाबरकत शख्सियत बन जाए और पैखाने पर बैठने और अलादत पसंदी की कू से नजात पाकर सफ़े अबरार और पाका में दाखिल हो जाए, यानी वो लोग जो अल्लाह वालों के सामने अपने को मिटा दे और अपनी राय को उनकी राय पर फना कर दे और अपने ख्यालात को मिटा दे तो नतीजा ये होगा कि उन अल्लाह वालों की सोबत से ये नेकों की सब में शामिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इनको वो उलूम और वो अपनी राय तो मेहरबानियां और वो अनवारात अता फरमाएंगे कि खुद भी अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे और नतीजा ये होगा कि दूसरों की रहनुमाई भी करेंगे और रहबरी भी करेंगे। अल्लाह अकबर। हिकायत दब्बाग और उसका इलाज। दब्बाग कहते हैं जो खाम चमड़ों की दबागत करते हैं, चमड़े की यानी खाल वगैरह की, और खाम चमड़ों की बदबू से उनका दिमाग मानूस हो जाता है। वाकया लिखा मारूमी रहमतुल्लाह ने कि एक दब्बाग एक दिन बाजार से गुजर रहा था कि अचानक अत्तारों के बाजार में पहुंच गया और ये इत्र फरोशों की दुकान की खुशबू का तहम्मुल न कर सका क्योंकि बदबूदार माहौल में रहते रहते बदबू उसकी तबीयत सानिया बन चुकी थी। बस इत्र की खुशबू से शख्स बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। एक हल्का हुजूम हो गया, कोई वजीफा पढ़कर दम कर रहा है, कोई उस पर गुलाब का पानी छिड़क रहा है, कोई हाथ पांव के हथेली और तलवों की मालिश कर रहा है, लेकिन इन तदबीरों से बजाय फाके होने के बेहोशी और बढ़ती जा रही थी। उसके भाई को जब खबर हुई तो दौड़ कर आया और फौरन खुशबू सूंघकर समझ गया कि इसी खुशबू की वजह से बेहोश हुआ है। उसने ऐलान किया कि मेहरबानी करो, खबरदार मेरे भाई को मारो मत, अब इस पर ना तो गुलाब पाशी की जाए यानी ना गुलाब छिड़का जाए और ना कोई और खुशबू करीब लाई जाए। और ये फौरन वहां से गायब हो गया उसका भाई। और इसने एक कुत्ते की इसने एक भाया लिया रुई का, उसको डंडी में लगाया और करीब तलाश किया। मेरे मुर्शिद फरमाते तो एक जगह उसको कुत्ते का मिसाइल नजर आया, जो कि कुत्ता लैंड करता है ना कभी कभी वो मिसाइल की शक्ल में भी खड़ा रहता है। तो उसने क्या किया, उसको लपेटा अच्छी तरह से और अपने भाई के पास पहुंचा और उसकी नाक में दाखिल कर दिया। तो उसकी बदबू से फौरन उसे होश आ गया। खल्क हैरान रह गई कि इसके भाई ने कौन सा कीमती लखलखा सुंघा दिया जो यहां अत्तारों के पास भी ना मिल सका। ये ऐसी कौन सी कीमती खुशबू है जो इन सबके पास नहीं, और ये जानी पता नहीं कहां से लेके आया क्योंकि छुपा कर लाया था। माँ फरमाते अंध के सरगीन सग अंध के सिरगीन सग दर आस्ती खल्क रा बशगाफ व आमद बा चुनी। उसका भाई दौड़कर कुत्ते का पखाना आती में छुपा कर लाया और हुजूम को चीरता हुआ अपने भाई के पास पहुंचा। सर बगोशश बरो हम चू राजू बस लिहाजा चरक बर बीनिए हु। अपने भाई के पास अपना सर ले गया जैसे कोई के राज की बात उससे कहनी है, और फिर क्या किया कि उसकी नाक के अंदर वो पखाना दाखिल कर दिया। इस इलाज से फौरन उसको होश आ गया। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत की खुशबू से जो घबरा रहा हो और इत्तिबाए सुन्नत की जिंदगी से जिसका दिल मानूस ना हो रहा हो तो उसको वही बीमारी समझना चाहिए जो किस्सा मस्कूर में दब्बाक को थी। यानी जिस गंदे मुआशरे और गुनाहों के माहौल में उसने एक तवील उम्र गुजारी है उसके दिलो दिमाग उसी गंदगी से मानूस हो गए। अब उसका इलाज क्या है, फरमाया कि उसका इलाज यह है कि आहिस्ता आहिस्ता उस गंदे माहौल से निकलकर खुशबूदार चमन की सैर क्या करे। और वो क्या है कि अल्लाह वालों की मजलिसे और उनकी सोहबत है। और फिर वहां चंद दिन रहने के बाद यही शख्स कहेगा कि हाय हम किस कदर गंदगी में थे, और माजी की गंदगी जिंदगी के तसव्वुर से माजी की गंदी जिंदगी के तसव्वुर से अश्कबार होकर आह खींचेगा। मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि जब इंसान गुनाह के माहौल में जाता है तो शुरू शुरू में उसको बहुत तकलीफ होती है, और अगर उससे वहां भागा है और जल्दी तौबा कर ले तो नतीजा क्या होगा कि उस गुनाह से माहौल से नजात हासिल कर लेगा। लेकिन अगर उसी गुनाह के माहौल में रहने लगेगा तो फिर क्या होगा कि वो गुनाह उसकी आदत सानिया बन जाएगी। लगे इस पर एक वाकया मेरे मुर्शिद ने सुनाया कि हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कानपुर के अंदर सुनाया कि कानपुर की वाज में अपने सुनाया कि कानपुर के अंदर वहां पे चमड़े वाले वही दब्बा किस्म के लोग रहते हैं, और कन्नौज के अंदर इत्र वाले वहां का इत्र मशहूर। तो कन्नौज की एक लड़की एक बेटी वो कानपुर में ब्याही गई, उसकी वहां शादी हुई। तो जैसे ही उसने घर में कदम रखा अपने ससुराल में तो कदम रखा तो चमड़े की बू आई। तो उसने अपनी सास से कहा अम्मा जी मेरा यहां पर गुजारा नहीं है, इस बदबू से तो मैं मर जाऊंगी। सास ने उसको सीने से लगाया गले से लगाकर कहा बेटी थोड़े दिन की बात है, तू एक काम कर चंदी ले ले फिर ये बदबू खत्म हो जाएगी और ये सब इस काम ठीक हो जाएगा, बस एक हफ्ता तू गुजारा कर ले इसको बर्दाश्त कर ले। उसने कहा अम्मा मेरे सर में बहुत सख्त दर्द है। उसने कहा बेटी बस थोड़े दिन तू गुजारा कर ले बस ये सब ठीक हो जाएगा। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक हफ्ते के बाद वो अपनी सास के पास आई, उसने कहा अम्मा मेरे कदमों की बरकत देखी, घर से बदबू खत्म हो गई, ये मेरे कदमों की बरकत। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी सास ने कहा ये बेटी ये तेरे कदमों की बरकत नहीं है, असल में तेरी नाक सड़ गई है, अब तेरी नाक इस बदबू की आदी हो गई है। तो फरमाया उसी तरह से जो गुनाह जो लोग ये कहते हैं कि गुनाहों से हमें कोई घबराहट नहीं है कोई परेशानी नहीं है कोई बेचैनी नहीं है और हमें बल्कि रोशनी के माहौल में और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी के अंदर ये अजीब लगता है कि साहब ये क्या है कि दाढ़ी भी रखो शलवार टखने से ऊपर रखो किसी औरत को भी ना देखो, और इतनी इतनी फिल्में आती है कि जिसको बंदा एंजॉय करता है और जो एंटरटेनमेंट के लिए है फरहत कल्ब के लिए है, तो आखिर उस डॉक्टर फरहत का हम बयान क्यों ना सुने कि जिससे कल्ब को फरहत मिलेगी। तो कहते हैं कि साहब ये भी कोई जिंदगी है। तो हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक्य से समझाते हैं, फरमाते हैं कि गुनाहों से جو جس آدمی کو گناہوں سے نفرت نہ ہو, اس کی بدبو معلوم نہ ہو, اس کا مطلب یہ کہ اس کا دماغ سڑ چکا ہے. اگر اسی کے اندر اس واقعے کو یہ سمجھایا کہ یہ پھر جب ماحول میں جاتا ہے تو اس ماحول میں جا کر وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے, وہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اور وہاں سے وہ بھاگنے کی فکر میں ہوتا ہے. اللہ فرمایا اس کو چاہیے کہ یہ نیک ماحول میں رہے, خوشبودار اللہ والوں کی مجلس میں آنا جانا شروع کرے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ والوں کی صحبت میں جب یہ رہے گا تو ماضی کی گندی زندگی کے تصور سے اشک بار ہو کر آہ کھینچے گا اور اللہ والوں کی صحبتوں کا شکر گزار ہوگا کہ اب اس کی ناک روز بروز خوشبو یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور غلامی کے لطف سے مست اور سرشار ہوگی اور یہ کہہ اٹھے گا, میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا, میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. سبحان اللہ, میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری ناکوں کو اب اور ہماری جانوں کو اپنے قرب کی لذت سے آشنا فرما دے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کی خوشبو ہمارے قلب و جان کو عطا فرما دے تاکہ یہی ہمارا اڑنا بچھونا بن جائے اور گناہوں کی بدبو اور بدعتوں کی غلاظت کو اللہ تعالی ہم پر منکشف فرما دے, ظاہر فرما دے کہ ہمارا اس میں دل ہی نہ لگے. اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمارا جینا مرنا اپنی رضا اور خوشی کے لیے قبول فرما دے.